نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحیم. تربیتی سیشن میں انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے سفر کے آداب کو. لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے جیسے مریض کی عیادت کے بارے میں سیکھا تھا کہ کیسے کرنی چاہیے مریض کی عیادت، تو انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ہم سفر کے بارے میں جانیں گے کیسے سفر کیا جائے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ سب چیزیں سکھا دیں، ورنہ ہم کیا جانتے تھے. ایون یہاں تک کہ مریض کی عیادت کی جو سلسلے میں میں نے آپ کو سنتیں بھی بتائیں، اور اس طریقے سے کہ کس طرح سے بہترین طور پہ آپ اجر کما سکتے ہیں، وہ طریقے بھی بتائے، تو ہم ان طریقوں کو اللہ تعالیٰ کی دیوی رہنمائی کے بغیر جان نہیں سکتے. اسی طرح آج آپ سفر کے کچھ آداب انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم بیان کریں گے کہ اس نے ہمیں، دیکھیں اس کی رحمت ہی ہے نا کہ اس نے ہمیں یہ طریقے بھی سکھلا دیے سفر کے بھی. تو انشاءاللہ ہم اس کو آج شروع کرتے ہیں. پہلی بات تو سفر میں یہ ہے کہ اپنے ہر سفر کو آپ اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے شروع کریں گے، چاہے وہ آپ کا سفر کوئی پرائیویٹ سفر ہو، کوئی بزنس ٹرپ ہو، کوئی کچھ بھی ہو. دیکھیں جو مومن ہوتا ہے نا، اس کا ہر جگہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رہنا لازم ہے. تو اس ہر سفر کو آپ کو چاہیے کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. مثال کے طور پہ آپ اپنے ملک جاتی ہیں، تو وہ سفر آپ کا کیسے اللہ کی رضا کے لیے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ یہ نیت کر لیں کہ یہ میں جو اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جا رہی ہوں، یہ جو میں ان کے ساتھ یعنی ایک اپنے پیرنٹس کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ ملاقات کر رہی ہوں، تو یہ بھی ایک صلہ رحمی ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑو. تو آپ اس طرح سے اس سفر کو بھی اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر سکتی ہیں. اسی طرح کوئی سفر آپ میں بھی علم حاصل کرنے کے لیے کہیں جا سکتے ہیں، کوئی چیز مطلب سیکھنے کے لیے. اسی طرح آپ تجارت کے لیے بھی جائیں تو وہ سفر بھی کوئی برا نہیں ہے، تجارت کے لیے بھی آپ سفر کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید آپ کے لیے یہ بات نہیں ہوگی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سفر جو ہے وہ عذاب کا ٹکڑا ہے، کیونکہ اس سفر میں بڑی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور آپ اپنا گھر بار سب چھوڑ کے جاتے ہیں، چاہے آج کے سفر ہوں یا پرانے زمانے کے. کہیں ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نہیں آج کے سفر تو بڑے آرام دہ. میرے خیال میں شاید کسی کے ساتھ کوئی فلائٹس کا اسکیجول خراب نہیں ہوا ہوگا، اس لیے شاید وہ کہہ رہے ہوں گے، ورنہ آپ دیکھیں سفر آج بھی تکلیف دہ ہے، مشقت والا ہے. ہر سفر تکلیف دہ ہوتا ہے، مشقت ہوتی ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ سفر ہماری ضرورت بھی ہے. کیونکہ امام شافعی کے کچھ اشعار ہیں، وہ فرماتے ہیں، جن کا میں آپ کو کچھ مطلب ہی بتاؤں گی، کہ سفر میں پانچ فائدے ہیں. پریشانی کا حل ہوتا ہے، روزی کی تلاش ہوتی ہے، حصول علم ہوتا ہے، ادب آپ سیکھتے ہیں، نیک کی صحبت میں رہتے ہیں، نیک کی صحبت حاصل ہوتی ہے. تو سفر کے فائدے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ ملک میں، والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنا دی، تو اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اس کے رزق سے کھاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے حرکت میں برکت رکھی ہے، हरकत करना, कोई सफ़र करना इंसान अगर सही नीयत से कर रहा है उसमें कोई बुराई नहीं, इंसान बहुत कुछ सीखता है उससे। और सफ़र का एक फ़ायदा जो है, सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि कबूलियत दुआ का ज़रिया है वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन लोगों की दुआएं ना कबूल हैं, मज़लूम की दुआ, बाप की दुआ और मुसाफिर की दुआ। तो जो भी सफ़र पे निकले, सफ़र आपका छोटा हो, अब जैसे 1-2 घंटे के हम सफ़र यहाँ पे भी करते हैं, हाईवेज़ पे जाते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, इसी तरह दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं, तो हर सफ़र में आपको चाहिए कि कसरत से दुआए मग़फ़रत करें, अल्लाह ताला की रहमत के लिए दुआ करें, अपनी दुनिया के लिए भी करें, आखरत के लिए भी करें। दुआ को ज़रूर लाजिम पकड़ लें कि हर सफ़र में मैंने दुआ ज़रूर करनी है। आपको कितना फ़ायदा है कि आप सफ़र कर रहे हैं और आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं। इसी तरह आप किसी को कह भी सकते हैं, कोई सफ़र पे जा रहा हो, कि दौरान सफ़र मेरे लिए दुआ की जाए। और एक दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा जो सफ़र का है ना, वो ये है कि जो आपके आमाल सफ़र की वजह से रह जाते हैं, उनका पूरा पूरा अजर आपके आमाल नामे में लिख दिया जाता है। आप कर नहीं रहे उनको, लेकिन क्यों नहीं आप कर रहे? इस वजह से नहीं कि किसी और चीज़ों में मशगूल हैं, इस वजह से कि सफ़र में जाहिर है थकावट भी है, मुश्किल भी होती है, नहीं पढ़ सकते, मसलन आप नवाफिल वगैरह अदा नहीं कर पाते, कई दफ़ा तिलावत आपका रोज़मर्रा का मामूल होता है मगर सफ़र की वजह से आप नहीं कर पा रहे, या कुछ और ऐसे अज़कार हैं, ज़िक्र हैं जो आप मामूल में करते हैं, कोई तहज्जुद है आपकी, वो सफ़र में आपकी रह गई। तो देखिए, एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी बीमार हो जाए या सफ़र में हो, तो इसके लिए वही आमाल नामा, वही आमाल लिख दिए जाते हैं जो वो हालते कयाम और हालते सेहत में सर अंजाम देता है। यानी उसके आमाल नामे में वो तमाम आमाल लिख दिए जाते हैं जो कि जब वो सफ़र नहीं कर रहा था या जब वो सेहत में था उस वक़्त वो किया करता था, कि अब वो बीमारी की वजह से नहीं कर पा रहा है या सफ़र की वजह से नहीं कर पा रहा। तो ये बुखारी की हदीस है, तो इंसान को उतना ही अजर मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह इंशाल्लाह ताला हम आज देखेंगे कि सफ़र के जो आदाब हैं, अगर हम उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लें, सफ़र से पहले हमने क्या करना है, सफ़र के दौरान क्या करना है, सफ़र के बाद क्या करना है। तो सफ़र से पहले अगर हम देखें कि सफ़र शुरू करने से पहले आपने क्या चीज़ करनी है, सबसे अहम चीज़ है इस्तखारा करना। सफ़र से निकलने से पहले अल्लाह ताला से इस्तखारा कर लेना, ये समझ लें कि अपने लिए आपने खैर और भलाई मांग ली। तो कोई भी किसी भी काम का इरादा करे, तो दो फ़र्ज़ पढ़े, फ़र्ज़ के अलावा 2 रकअतें पढ़े, 2 नफल पढ़े, फिर उसके बाद आप इस्तखारे की दुआ कर लें। इसके अलावा आप अल्लाह की मखलूक से भी मशवरा करें, लेकिन जब आप ऐसे लोगों से मिलें जो उस जगह से होके आए, मिसाल के तौर पे आप हज का सफ़र कर रहे हैं, उम्रे का सफ़र कर रहे हैं, या किसी नई जगह का सफ़र कर रहे हैं, या अपने जहाँ पे आप जाते रहते हैं वहाँ पे भी, अगर आप अपने मुल्कों में भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी इंसान किसी से मशवरा ले लेता है, कोई बात पूछ लेता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता के इस चीज़ की ताकीद की है कि ऐ नबी, इन सहाबा से मामले में मशवरा कर लिया करें, या अपने साथियों से मशवरा कर लिया करें। तो इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि वो शख्स कभी शर्मिंदा नहीं हो सकता जो अल्लाह ताला से इस्तखारा करे और मखलूक से मशवरा करे। तो मशवरा करने में आप इंसान का एक तकब्बुर भी टूटता है कि मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैं तो हर एक चीज़ जानती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है मशवरा करने। नहीं, मशवरा करें जो जानने वाले हैं उनसे, ऐसे नहीं अनजान बंदे से, नहीं, जो बंदा वहाँ से हो के आया हो या जिसको पता हो कुछ दुनिया का, कुछ हिकमत हो उसके अंदर, जो उस जगह के हालात वाकयात जानता हो, उससे मशवरा कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, और साथ आप इस्तखारा तो पहले आप करेंगे ही। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है, अहम चीज़, वो है कि अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तग़फ़ार कर लेनी चाहिए। कि नहीं मालूम कि इंसान पता नहीं सफ़र से वापस लौट सकता है या नहीं लौट सकता, ठीक है। तो किसी के साथ भी कुछ रंजिश हो, किसी के साथ भी कोई अपने आपकी तरफ से कोई ज़्यादती हुई हो या उसकी तरफ से, तो उससे माफ़ी मांग ले। किसी से कोई हक किसी का नहीं दिया, उसका हक अदा कर दे। इसी तरह से छोटे मोटे जो आपके कर्ज हैं, बड़े कर्ज तो नहीं मैं कह सकती, जाहिर सी बात है जो आपके घरों के या इन चीज़ों के कर्ज हैं वो तो नहीं अदा कर सकते, मगर छोटे मोटे जो कर्ज किसी से लिए मैं, तो नंबर चार ये है कि आप कर्ज अदा करें, ये बहुत ज़रूरी है। कभी हम किसी से ले देते हैं मसलन $100, तुम दे दो फिर मैं बाद में तुम्हें दे दूंगी या इस तरह, तो आप उस चीज़ को अदा कर लें। फिर अगली चीज़ ये है, अपना वसीयतनामा लिख लें, नहीं लिखा हुआ तो सफ़र से पहले ज़रूर लिखें। और इसके ऊपर किसी राजदार आदमी को, काबिले भरोसा आदमी को गवाह भी बना लें। अब ये जो सफ़र हम आजकल करते हैं, मसलन 4-5 घंटे का सफ़र जो जहाज़ का होता है, इसको हम कुछ समझते नहीं हैं, लेकिन ये भी तो सफ़र है ना, खुदा मालूम वापस पहुँचें या नहीं। हज पे जाने से पहले तो हम इसका खसूसी एहतमाम करते हैं, मगर क्या जब आप पाकिस्तान इंडिया वगैरह जाते हैं तो वो क्या सफ़र नहीं है, वो भी तो सफ़र है। तो यही काम करना चाहिए। और जितने दिन, अगला पॉइंट आपके लिए है कि जितने दिन का सफ़र आपने करना है उतने दिन का खर्चा आदमी है तो अपने घर वालों को दे के जाएगा, ठीक है, आदमी के लिए तो ये भी ज़रूरी है। और अगली चीज़ ये है कि अपने सफ़र में अपना जो खर्चा है उससे कुछ ज़रूरत से ज़ायद खर्चा अपने साथ रख ले, इसलिए हो सकता है रास्ते में आप किसी मोहताज की, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सके। और दूसरी ये भी चीज़ है कि देखें जो सफ़र होता है ना, इसके अंदर इंसान को नहीं मालूम होता ऊंच नीच का, कभी इंसान को ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा रख लें। और इस नीयत से रखें कि अगर किसी को ज़रूरत हुई, क्या पता कोई ज़रूरतमंद मिल जाए तो मैं उसको सदका कर सकूँ। मुसाफिर के ऊपर सदका करना तो बहुत ही आपको मालूम है ना, अजर का बाइस है। फिर अगर हो सके तो किसी के साथ सफ़र करना बेहतर है। गो ये मतलब कोई मना नहीं है कि आप अकेले नहीं सफ़र कर सकते, मगर एक हदीस में हमें पता चलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को अकेले सफ़र करने के नुकसान का इल्म हो जाए तो मुझे मालूम है कि तुम कोई सवार रात को तन्हा सफ़र करता हुआ ना पाओ। यानी जैसे होता है कि गाड़ी लेके निकल गए, अब 5-6 घंटे का हाईवे का सफ़र है, अब किसी और स्टेट में जा रहे हैं तो अकेले ही निकल गए, बेहतर ये है दो लोग आगे पीछे निकल जाएं या एक ही गाड़ी में दो लोग चले जाएं, ठीक है। तो ये इसको बेहतर समझा गया, बेहतर करा दिया गया है, ये इस चीज़ के लिए अभी बेहतर है कि अगर रास्ते में कोई ऐसी मसला हो जाता है तो कोई ना कोई एक इंसान ज़रूर उसके साथ होना चाहिए, अगर मौत वाकई हो जाए तो कोई बताने वाला हो। इसी तरह रास्ता भी आसानी से कट जाता है इंसान का कोई साथी हो तो ये भी एक चीज़ है जिसको करना चाहिए। अगर ज़्यादा लोग हों तो एक बंदे को अमीर बना लेना चाहिए, मसलन कई दफ़ा होता है हम कहीं जा रहे होते हैं, 3-4 गाड़ियाँ होती हैं हमारे साथ, तो उनमें से हमें जिस तरह से सिखाया गया है, ये भी सुन्नत अब ख़त्म हो चुकी है कि एक को अमीर बना ले, लीडर बना ले, कि सारे इसको कहें जो ज़्यादा जहाँ दीदा हो। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि मुत्तकी इंसान हो और खुदा का खौफ रखने वाला हो, ऐसे इंसान को अमीर बना लेना चाहिए, कि जैसे समझ लें आप लीडर कह सकते हैं कि उसको लीडर बना लिया जाए। फिर सफ़र से निकलने से पहले एक बात, अगर आप कर सकें तो, बाकी कुछ जगहों पे तो हमारे हाथ में नहीं होता, कि जुमेरात के दिन कोशिश करें कि आप अपना सफ़र स्टार्ट करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात के दिन ग़ज़वा तबूक के लिए रवाना हुए थे, और आप जुमेरात के दिन निकलना पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफ़र के निकलते थे तो जुमेरात के दिन के अलावा कम ही निकलते थे, इससे आपको पता चला है कि उस दिन सफ़र स्टार्ट करना पसंदीदा है। ज़ाहिर है ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के लिए हफ्ते के दिन गए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ये था। इसी तरह रात में सफ़र करना भी पसंदीदा है। इसके बारे में एक हदीस में आता है, जैसे मसलन हम लोग किसी जगह पे जा रहे होते हैं, स्पेशली अगर मतलब रात का सफ़र होता है तो एक तो पता ही नहीं चलता, जल्दी जल्दी सफ़र गुजर जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का सफ़र लाजिम पकड़ो, क्योंकि रात को ज़मीन लपेट दी जाती है। यानी रात के सफ़र में बड़ी सहूलत हो जाती है, शोरोगुल नहीं होता, ट्रैफिक नहीं होती, गर्दोगुबार नहीं होती, सुकून इत्मीनान से आप अपनी जगह पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप जब सफ़र करने लगें तो अच्छा आपके लिए ये है कि आप अलविदा करें अपने घर वालों को या दोस्त अहबाब को, मिल के आएं कि मैं सफ़र पे रवाना होने वाली हूँ। ये नहीं कि कुछ लोग ऐसे करते हैं, चुपचाप ही निकल गए, किसी को ना बताया, ना कुछ है, ना पता है, ना चलो एक सरप्राइज़ हो गया। या कुछ लोगों को बहुत ही सीक्रेट रखने की आदत होती है, तो वो बिल्कुल ही खामोशी से चले जाते, किसी को भी नहीं पता चलता, बाद में पता चलता है फलां तो चला भी गया। तो देखिए, अलविदा करना भी एक सुन्नत के कामों में से है, क्योंकि एक हदीस में है कि एक आदमी जो था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आके कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सफ़र का इरादा रखता हूँ, मुझे कोई वसीयत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरने को लाजिम पकड़, यानी तकवा, अल्लाह ताला का इख्तियार करना, और हर बुलंद जगह पर चढ़ते हुए अल्लाह अकबर कहना। जब वो आदमी वापस मुड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह इसके सफ़र की दूरी को लपेट दे और इसको सफ़र को आसान फरमा दे। देखिए, आप इससे दो चीज़ें पता चली ना, एक तो ये कि वो भी आया अलविदा कहने के लिए, और जिसके पास वो अलविदा कहने आया उन्होंने क्या फरमाया, आगे से दुआ भी दी, नसीहत भी की। तो आपके पास भी इसका मतलब कोई आए सफ़र पे जाने के लिए, कोई खुदा हाफिज़ कहने के लिए आपको आए, तो आपने क्या करना है, आप उसको, अगर कोई आपके पास अच्छी बात है, मसलन यही आपने हदीस सुन ली, तो आपको यही उसको बयान कर दें और उसको दुआ ज़रूर दें, ये आपका काम होगा। तो फिर आप देखें ना, उसको भी जब अलविदा कहने के वजह से उसको भी दुआ मिल गई। और एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए, एक और शख्स आया था अलविदा कहने, आपने उसके लिए गुनाहों की मगफिरत मांगी थी और ये फरमाया था कि तू जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह ताला तेरे लिए खैर और भलाई को आसान फरमा दे। कितनी प्यारी दुआ है ना किसी मुसाफिर के लिए, कि पहले उसको फरमाया अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, उसके बाद फरमाया अल्लाह तेरे गुनाहों को बख्श दे, फिर फरमाया तो जहाँ कहीं भी हो अल्लाह तेरे लिए खैर और भलाई को आसान फरमा दे। तो ये बहुत ही अच्छी दुआ है किसी के लिए करने के लिए, बहुत ही यानी अहम है, हमें दोनों तरफ से सीखना चाहिए। सफ़र में जाने के लिए भी हमारे लिए ये होना चाहिए, और अगर कोई हमसे मिलने के लिए आए तो उसके लिए भी। अब इसके बाद, अब हमारा सफ़र जब स्टार्ट होता है तो उस वक्त हमारा क्या तरीका कार होना चाहिए, ये तो सफ़र से पहले की आपने बातें सीख ली कि ये करना चाहिए आपको। ठीक है, अब दौरान सफ़र जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पे निकलते थे तो अपने ऊँट पे बैठ जाते थे, 3 दफ़ा अल्लाह अकबर कहते थे, पहले बैठते ही ना 3 दफ़ा अल्लाह अकबर कहते थे, फिर जो हम दुआ पढ़ते हैं, सुभान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, ये दुआ पढ़ते थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फ़ी सफ़रिना हादल बिर्र व तक्वा। क्या मतलब है इसका, कि ए अल्लाह हम तुझसे इस सफ़र में नेकी और तकवा के तलबगार हैं, व मिनल अमली मा तरदा और अमल की तौफीक मांगते हैं जिससे तू राज़ी हो जाए, अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हाजा, ए अल्लाह हम पर इस सफ़र को आसान कर दे, व अतविलना बुअदहु और इसकी दूरी को लपेट दे, अल्लाहुम्मा अंत साहिब फ़ि सफ़र, अंत साहिब फ़ि सफ़री, यानी अल्लाह तू हमारे सफ़र का साथी बन, तू साथी बन जा हमारे सफ़र का। सुभान अल्लाह, वल खलीफा तू फ़ि फ़िल अहली और हमारे पीछे हमारे घर वालों का खलीफा बन जा, यानी उनकी हिफाजत फरमा, ये मतलब है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन वसाइ सफ़री, ए अल्लाह सफ़र की सख्ती से हम तेरी पनाह मांगते हैं, वकाबतिल मंज़री और परेशान कुन मंज़र देखने से, वसूइल मुनक़लिबी फ़िल माली वल अहल और अहलो अयाल और माल में बुरी वापसी से, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि वापस आए तो उनके साथ कुछ बुराई ना हो गई हो, कोई मुसीबत ना उन पे आ गई हो, कोई आफत ना उन पे आ गई हो, इसको देखने से हम तेरी पनाह मांगते। और एक रिवायत में नफ़ा और के बाद नुकसान और मज़लूम की बददुआ से तेरी पनाह पकड़ते। तो ये बहुत ही अच्छी दुआ है, बहुत खूबसूरत है, इसको ज़रूर नहीं याद अपने पास लिख लें, लिख के आप ज़रूर मांग लें, साथ रखें इसको। इसी तरह जब जैसे आपने पिछली हदीस देखी है कि बुलंदी पे चढ़ते हुए अल्लाहु अकबर कहना, जब आप बुलंदी पे जाएं, जहाज़ है ऊपर को जाता है, तो आप अल्लाहु अकबर कहें और दुआ को नहीं भूलें, दुआ ज़रूर करनी है। तो दुआ समझने की आपकी कबूलियत दुआ का वक्त है। आप अपने साथ कोई खसूसी वज़ाइफ या कोई कुरान पाक अपने साथ रख सकते हैं कि आप सफ़र में वो पढ़ें। और एक बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताती हूँ सफ़र के हवाले से, बहुत ही आपको फ़ायदा देगी इंशाअल्लाह ताला। देखें, इस ज़िंदगी के हर लम्हे को गनीमत समझें। सफ़र के दौरान नफली नमाज अदा करने का बड़ा ही अच्छा मौका होता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सफारी सवारी पर नफली नमाज अदा किया करते थे। तो आप जैसे जहाज़ में बैठी हुई हैं, अब जहाज़ का मुंह जिधर को भी है, आप अपने नफल पढ़ती रहें, आप आराम से बड़े मज़े से पढ़ें, वैसे भी इतनी फरागत होती है। आप इसी तरह गाड़ी में जा रही हैं, आपकी मतलब कई ट्रैवलिंग हमारी दूर की होती है, 3-4 घंटे की तो आम ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में हो जाती है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। आमिर बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सवारी पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, चाहे सवारी का मुंह किसी तरफ भी हो जाता था, बस आप बैठे और नमाज शुरू की, अब सवारी जिधर को भी हो गई, वितर भी आप उस पर पढ़ लिया करते थे सवारी पर। और ये हुक्म ख़ास तौर पर नफली नमाज के साथ है। फ़र्ज़ नमाज के अंदर आपको पता है कि फिर बेहतर ये है, आप जहाज़ से तो नहीं आप ज़ाहिर उतर सकते, लेकिन अगर कोई दूसरी सवारी तो बेहतर यह उतर के आप किबला रुख हो फिर, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था। मगर एक और हमें, क्योंकि रिवायत में मिलता है अनस बिन मालिक से जो रिवायत है, उससे हमें ये मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का इरादा फरमाते तो किबला रुख होकर नमाज के लिए तकबीर कहते, फिर सवारी को आज़ाद छोड़ देते, वो जिधर चाहती रुख बदलती रहती और आप नमाज़ पढ़ते रहते। यानी हमें ये भी रिवायत मिलती है मुस्नद अहमद से कि यानी आपने नमाज शुरू की तो सवारी का रुख किबले की तरफ कर लिया, और ख़ास तौर पर उन्होंने फ़र्ज़ नमाज के लिए फरमाया। यानी आप अगर जहाज़ में हैं या आप अगर गाड़ी में हैं तो आपने मुंह उधर को कर लिया जिधर वो किबला है, और उसके बाद फिर गाड़ी जिधर मर्जी चलती गई आपकी नमाज हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये भी हमें रिवायत मिलती है। तो आप कहीं नहीं, इसलिए मैं हमेशा जब लोग पूछते हैं तो मैं यही कहती हूँ कि बेहतर तो यह है कि आप उतर के पढ़ लें, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ सकते तो हमें ये भी रिवायत मिलती है, तो आप नमाज ना अपनी जाने दें, बस ये बात है। सफ़र के दौरान आप कोशिश करें कि जो आपके साथी मुसाफिर हैं उनके साथ भी अच्छा बर्ताव किया जाए, ठीक है? इसलिए क्योंकि देखें, एक तो वैसे ही मुसाफिर की, हर एक मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, और दूसरी ये कि हमें ख़ास तौर पे मुसाफिरों के साथ अच्छे सलूक का हुक्म दिया गया है। फिर सफ़र से वापसी जल्द अज जल्द करनी चाहिए, इसके बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हमें कि जब कोई शख्स अपनी हाजत पूरी कर ले तो अपने घर की तरफ जल्द वापस लौट आए। यानी अब आपका काम वहाँ पे ख़त्म हो गया, अब आप खाम खा में रह रहे हैं, मसलन कोई तिजारत के लिए गया, कुछ जॉब के लिए गया, अब बेकार में रहते चले जा रहे हैं कि चलो थोड़े दिन ज़रा और ही तफरी कर लें, यहाँ पे थोड़े दिन और आराम कर लें, नहीं, फिर जल्द अपने घर को वापस आना चाहिए। अगर कोई अमीर काफ़िला है तो जैसे मैंने आपको बताया अमीर एक मुकर्रर कर लें, तो उसको चाहिए कि सफ़र के लिए एक तरबियती प्रोग्राम कोई ज़रूर दे, मसलन जाने से पहले आप लोगों को हज के लिए तो मिलता ही है इस तरह का, मगर अगर आपका बाकी सफ़रों में भी कोई अमीर है तो उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सफ़र से पहले हमें कुछ मालूमात पहुंचाई जाए उस जगह के भी बारे में, रास्ते के भी बारे में, इसी तरह जैसे मैंने आपको सफ़र के और आदाब बताए हैं तो वो भी आपको बता सकते हैं, तो इसका भी एहतमाम किया जा सकता है। अब मैं आपको, क्योंकि मुख्तसर हम लोग इंशाल्लाह ताला करेंगे, मगर मैं आपको अब सफ़र के जो इख्तिताम है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि सफ़र के दौरान जो आपने लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है, क्योंकि किसी इंसान के एक, इसके अंदर बड़ी अहम ये बात है कि किसी इंसान को अगर परखना हो आपने तो कहाँ से परखा जा सकता है, उसके सफ़र, उसके साथ सफ़र करके। सफ़र में आपको पता चलेगा कि कोई इंसान कैसा है, यानी सफ़र में इंसान अपनी असलियत पे आ जाता है। तो सफ़र में इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इंसान अपने बेहतरीन रवैये को रखे, इसलिए कहा गया था ना कि किसी को आपने परखना हो वो किस तरह का है, उसके साथ या तो तिजारत की हो यानी, या उसकी हमसाइगी में रहे हो, या फिर उसके साथ सफ़र किया हो, तो उसमें आप उसको जांच सकते हैं कि ये किस किस्म का इंसान है। तो इसलिए सफ़र के दौरान इंसान को अपने बेहतरीन अखलाक पे रहना चाहिए। अच्छा, तो अब सफ़र हमारा ख़त्म जहाँ पे होता है, तो देखिए बातें तो वही होंगी जो मैंने आपको पहले बताई हैं, सफ़र की जो मतलब दौरान आपने तस्बीह पढ़ी है और आपने दुआएं की और सब है। अब जो एंड सफ़र हो रहा है तो उस वक़्त की एक ख़ास दुआ है, वो है आयबून आयबून ताइबून आबिदून ली रब्बिना हामिदून। ये कितनी आसान और छोटी सी है ना, यानी हम लौटने वाले हैं, हम तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, अपने परवरदिगार की हमदो सना करने वाले हैं। तो क्या है, बहुत ही आसान है, आपको अभी याद हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो तीन चार तो अल्फाज हैं सिर्फ। क्या है आयबून, अलिफ से आयबून लौटने वाले, ताइबून तौबा करने वाले, आबिदून इबादत करने वाले, ली रब्बिना लिए हमारे रब के, ठीक है, हामिदून हम्द करने वाले। तो ये इसको बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार इसको पढ़ना मुस्तहब है, पसंदीदा है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा अदब क्या है सफ़र के, देखिए ये इस्लामी अदब नहीं है सरप्राइजेस देना। जो इंसान घर पहुंचने वाला हो उसको चाहिए कि उससे पहले इतला भेज दे, फ़ोन कर दिया, खत लिख दिया, कुछ भी करे मगर इतला भेज देनी चाहिए, रात को घर में कदम ना रखे विदाउट इतला दिए, ठीक है। और इसकी हमें ताकीद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, आपने फरमाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को, एक हदीस से पता चलता है, रात को घर में आने से मना फरमा दिया, और आप खुद भी घर में दिन के पहले पहर या पिछले पहर सफ़र से तशरीफ़ आवरी फरमाते थे। यानी इंसान क्यों, इसकी वजह क्या थी कि रात के वक्त अपने अहलो अयाल के पास आना, उनको यानी अगर इतला नहीं दी हुई है तो उनको भी एक बेआरामी देना, और या उनकी टो में शायद लगे हुए हैं कि देखें कि रात को क्या कर रहे हैं इस वक्त, वो एकदम उनके ऊपर धावा बोल देना, ये सही नहीं है। और फिर आपने इसकी एक और भी हिकमत बताई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताकि बिखरे हुए बालों वाली कंघी करे, मतलब किसी का हस्बैंड है बहुत लंबे अरसे के लिए कहीं गया हुआ है, वो अपने आप को सही बनाओ सिंगार कर ले, और खाविंद को गायब समझने वाली लोहा इस्तेमाल कर ले, यानी मतलब ये है कि अपने आप को साफ़ सुथरा कर दे। इस ख़ास तौर पे इशारा है शर्मगाह के बालों को साफ़ करने का, कि उसका शौहर वापस आएगा तो उससे पहले उसको अपने आप को साफ सुथरा कर लेना चाहिए। एक और हदीस से भी इसकी ममानियत की हिकमत पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी को रात के वक्त घर में दाखिल होने से मना फरमाया ताकि कहीं अपने घर वालों की खयानत को खयानत में मुलविस ना समझे, और ना इनकी लगजिशें तलाश करने में लग जाए, अच्छा मेरे पीछे से तुम लोग ये करते थे तो मैं ये अब मुझे पता चला। नहीं, इस देखिए कितना खूबसूरत हमारा दीन हमें अदब सिखाता है, नहीं इतला दे के आओ, वो रेडी हो, वो मेंटली भी रेडी हो, घर को भी साफ़ सुथरा कर लें और अपने आप को भी साफ़ सुथरा कर ले, कोई एहतमाम भी कर ले, तो ये अचानक से एकदम आके खड़े हो जाना मुँह पे, ये सही नहीं है। खास तौर पे ये कोई मुश्किल ही है जो लंबे अरसे के लिए घर से गया हो ना, मसलन महीने भर के लिए गया हुआ, पता नहीं है कब आएगा या उससे ज़्यादा। जो सुबह को जाए शाम को आए उसका तो जाहिर है पता ही होता है किसने आना है। इसी तरह एक सुन्नत जो हमारे यहाँ ख़त्म हो चुकी है वो है कि सफ़र से जब वापस पहुँचे तो मस्जिद में 2 रकतें अदा करें, ये सुन्नत नबवी है। लेकिन इक्का दुक्का लोगों के अलावा ये सुन्नत ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, हम लोग औरतें मस्जिद ना सही, हम घर पहुँच के सबसे पहले 2 नफल पढ़ें। ठीक है, मर्द हैं कोशिश करें मस्जिद जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो घर में ही पढ़ लें। चलो अगर मस्जिद चले गए तो एक सुन्नत भी पूरी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाश्त के वक्त सफ़र से वापस आते तो मस्जिद में दाखिल होते, 2 रकतें पढ़ के फिर आराम से बैठा करते थे। हालांकि उनके सफ़र तो देखें इतने लंबे, तकलीफ़देह, मुश्किल होते थे। आजकल तो हमारे हम खुद कहते हैं हमारे सफ़र उनसे तो आसान है ना, फिर भी हमें ये तौफीक नहीं होती कि हम मस्जिद जाके 2 नफल पढ़ें। ये 2 नफल क्यों है? इस ज़ात के लिए पढ़े जा रहे हैं जिसने वापस घर पहुंचने के लिए ज़िंदगी को बाकी रखा, घर तक पहुंचा दिया। ठीक है, ये तहियतुल मस्जिद नहीं है, ये सफ़र से वापसी के ख़ास नफल हैं। तो सफ़र से वापस आने के लिए इंसान को आने के बाद अपने, हम औरतें हैं तो हम अपने घर में दाखिल होकर पहले 2 नफल अदा करें। सही है, तो ये सफ़र के चंद आदाब थे। हो सके किसी से तो सफ़र से वापसी के बाद लोगों को खाने की दावत दे, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना वापस आए एक सफ़र से तो एक ऊँट या एक गाय ज़िबा करते थे। एक एक दफ़ा आए तो एक ऊँट ज़िबा किया या किसी और दफ़ा एक गाय ज़िबा किया करते थे। अरबी लोग इसको एक ख़ास खाना कहते थे कि जो मुसाफिर सफ़र से आने के बाद लोगों को खिलाता है। तो ये भी एक लोगों से मिलने का भी एक तरीका हो जाता है। ये थे सफ़र के चंद आदाब जो मैं आपके सामने रखना चाहती थी और उम्मीद है कि हम इनके ऊपर अमल भी करेंगे। शुरू में मैं इसीलिए दुआ करती हूँ, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा 'अल्लमतना, अल्लाह ताला जो तू इल्म हमें दे उसे हमें नफ़ा उठाने की भी तौफीक अता फरमा। तो अगर ये किताबों में लिखे रह गए तो फ़ायदा नहीं है, इनको जब सफ़र पे आप जाने लगे, सफ़र तो आप ज़िंदगी का मामूल बन गए, हर 4-6 महीने बाद कोई ना कोई सफ़र करते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं जाना आना पड़ ही जाता है। तो आप इसको ज़रूर अपने नोट्स में देखें और कोशिश करें कि आपके अमल में ये आ जाए। इन सुन्नतों पे ज़रूर चलने की कोशिश करें जो आपको मैंने सारी ये बताई हैं इंशाअल्लाह ताला। तो आज का जो ज़िक्र मैं आपको बताना चाहती हूँ, आसान, बहुत आसान ज़िक्र है। आयतल कुर्सी का जो शुरू है वो है ये ज़िक्र, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। क्योंकि इस जिक्र के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें आज़म इसमें है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। पूरी जो रिवायत है वो तो ये है कि इसमें आज़म इन 2 आयतों में है। एक आयत तो इस वक्त नहीं हम देख रहे, आले इमरान की इब्तदाई आयत में आपने फरमाया, और कौन सी है वो? अलिफ लाम मीम के बाद कौन सी है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। तो आप देखें कि इसमें आज़म के वास्ते से जो भी दुआ मांगी जाए ना वो अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। तो इसमें आज़म है, इसलिए आप इस ज़िक्र को सिर्फ पूरे ना भी पढ़ रहे हैं, आप आयतुल कुर्सी नहीं भी पढ़ रहे, आप बस ये पढ़ दें, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हय्युल कय्यूम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। कितना आसान ज़िक्र है ना आज का, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जो भी हमने सीखा है, जो हम अपनी तरबियत के लिए कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन कोशिशों को कबूल और मंजूर फरमाए, हमारे अमल में इनको लेकर आए। इन ये हमारे अमल में नहीं आई तो हमारी कोई तरबियत नहीं हो रही फिर। अल्लाह ताला इनको हमारे अमल में शामिल फरमा दे और अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमा दे इस बैठने को, इस जमा होने को, इस वक्त में मिलने को, अल्लाह ताला हमारे लिए कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।